नमस्कार भारत, तारीख 2 जुलाई दिन गुरुवार, मैं हूं विनीत खरे। ग्रीस संकट पर यूरोजोन के देश जनमत संग्रह के बाद करेंगे बातचीत। उधर भारत पर ग्रीस संकट का क्या असर होगा?
मेनली क्या आएगा, जो यूरो है वो डॉलर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो जितना डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा उतना रुपी वीक होगा।
क्या भारत डिजिटल क्रांति के लिए तैयार है? नरेंद्र मोदी सरकार के राज में अल्पसंख्यकों में चिंता के माहौल पर सुनिएगा विशेष रिपोर्ट।
आज तक कभी किसी सरकार में इतना बुरा व्यवहार नहीं हुआ है जितना कि इसमें मारपिटाई और हालात इतने खराब कर दिए सरकार ने।
साथ में विंबलडन से मैचों का ताजा हाल और अखबारों की सुर्खियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अविनाश दत्त से। यूरोजोन के वित्त मंत्रियों ने तय किया है कि ग्रीस के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक वहां से जनमत संग्रह का फैसला नहीं आ जाता। ग्रीक वित्त मंत्री यानिस वरुफाकिस ने कहा कि यूरोपीय संघ के करदाताओं का रवैया ब्लैकमेलिंग जैसा है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने ग्रीस के लिए पैसे के प्रावधान को खत्म नहीं किया है, लेकिन ग्रीक बैंकों को भुगतान रोक दिया है। बिना यूरोपीय केंद्रीय बैंक के पैसे की ग्रीक बैंकों के फेल होने का खतरा है। ग्रीक प्रधानमंत्री ने लोगों से यूरोपीय प्रस्तावों को नकार देने की अपील की है। मिस्र के सिनाई इलाके में सेना और इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के बीच चल रही भीषण लड़ाई में दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। ये लड़ाई शेख जुवैद नाम के शहर के नज़दीक हुई है। मिस्र की सेना ने इस लड़ाई में लड़ाकू जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया है। राजधानी काहिरा में मिस्र की सेना के विशेष सैनिकों ने एक इमारत पर हमला किया और मुस्लिम ब्रदरहुड के 9 सदस्यों को मार डाला। आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय का दावा है कि ये लोग कई हमले करने की योजना बना रहे थे। मुस्लिम ब्रदरहुड ने इन दावों का खंडन किया है। संगठन ने लोगों से राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल-सीसी के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील भी की है। क्यूबा के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रॉबर्टो मोरालेस ने अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की उस घोषणा का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि दोनों देश दशकों बाद एक दूसरे के यहाँ दूतावास खोलेंगे, पर डॉक्टर मोरालेस ने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि अमरीका अब क्यूबा के ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को भी हटाए। हमें लगता है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की बहाली के साथ आर्थिक प्रतिबंधों को भी हटाया जाना चाहिए। इन प्रतिबंधों की वजह से हमारे देश का विकास प्रभावित हुआ है। इनकी वजह से हमें कई किस्म की कमियों का सामना भी करना पड़ा है। क्यूबा के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रॉबर्टो मोरालेस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रितानी रक्षा मंत्री ने देश की संसद से आग्रह कर माफ कीजिएगा ब्रितानी रक्षा मंत्री देश की संसद से आग्रह करने वाले हैं कि वो सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ऊपर हवाई हमले न करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करें। ऐसा समझा जाता है कि माइकल फेलन संसद से कहेंगे कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के ऊपर इराक में हवाई हमले करना और सीरिया में न करना बेतुका है। फेलन ने कहा कि ऐसा संभव है कि ब्रिटेन के सैलानियों के ऊपर जो ट्यूनिशिया में हमला हुआ है उस हमले की साजिश सीरिया के रका में रची गई हो। रका एक तरह से इस्लामिक स्टेट की राजधानी है। ब्रितानी संसद ने 2 साल पहले सीरिया पर हवाई हमले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। सऊदी अरब के खरबपति शहजादे अल वलीद बिन तलाल ने कहा है कि वो $32 अरब की अपनी कुल संपत्ति दान में दे देंगे। शहजादे अल वलीद ने दौलत सऊदी अरब और बाहर कई धंधों और कंपनियों में पैसा लगाकर पैदा की है। उन्होंने एप्पल और ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियों में भी निवेश किए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में नमस्कार भारत, आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। शुरुआत ग्रीस से। एक ओर प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास के तेवर आक्रामक बने हुए हैं तो दूसरी ओर यूरोजोन के देश ग्रीस में जनमत संग्रह को लेकर बहुत उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। यूरोजोन के देशों का कहना है कि चाहे जो भी प्रस्ताव हो, यूरोजोन की तरफ से आर्थिक मदद का कोई भी फैसला जनमत संग्रह के परिणाम आने के बाद ही होगा। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार पेश कर रहे हैं अविनाश दत्त।
कल शाम ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सीप्रास कुछ नर्म पड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए सोचा गया क्योंकि ग्रीस ने यूरोजोन के कर्जदाताओं को कहा था कि वो उनकी तमाम शर्तों को मानने के लिए तैयार है। ग्रीस बस अपने लिए कुछ रियायतें चाहता है, लेकिन बात बनी नहीं। यूरोजोन की तरफ से की तरफ से खबर आई कि वो अब तभी कुछ सोचेंगे जब जनमत संग्रह का परिणाम आ जाएगा। यूरोजोन के अध्यक्ष यरून डाइस ब्लूम ने कहा, अब जब तक जनमत संग्रह के परिणाम नहीं आ जाते तब तक यूरो ग्रुप के अंदर या और ग्रीस और यूरो ग्रुप के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि जो भी हालात बने उसके लिए हमें दुख है, और वो दुख इसलिए है क्योंकि लोग यूरोप का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। यूरो ग्रुप के अध्यक्ष यरून डाइस ब्लूम के शब्द। इन खबरों पर लोग सोच ही रहे थे कि ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सीपरास टीवी पर आग उगलते हुए दिखाई दिए। सीपरास ने अपने देश के लोगों से पुरजोर तरीके से आह्वान किया कि यूरोजोन के प्रस्तावों को वो लोग नकार दें। उन्होंने कहा कि ग्रीस की जनता यूरोग्रुप के प्रस्तावों को नकार दे तो वो ज़्यादा ताकत के साथ बातचीत कर पाएंगे। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी पेंशन और बैंकों में जमा मेहनत की कमाई सब सुरक्षित है। ग्रीस के वित्त मंत्री यानिस वारुफाकिस ने कहा कि अगले सोमवार तक सब साफ हो जाएगा। सोमवार को हम चाहते हैं कि जो भी समाधान हो वो ऐसा हो कि उसे चलाए रखा जा सके। ऐसा नहीं चल सकता कि समझौते से केवल समस्या का विस्तार हो और नए दौर की बातचीत शुरू हो जाए। 25 जून को उन्होंने हमें बहुत ही सख्त शर्तों पर एक पैकेज देने की बात कही, पर हमें तो इसके लिए जनादेश मिला ही नहीं था। सोमवार को कर्ज लेने वालों और कर्ज देने वालों सबके लिए सब कुछ साफ हो जाएगा। जनमत संग्रह से पता लगेगा कि ग्रीस लोग किस बात के लिए तैयार हैं। हम ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जिससे लगे कि समाधान हो गया और फिर समस्या बढ़ जाए। यानिस वारुफाकिस के शब्द। अब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पैसा ना चुका पाने वाले देशों में सूडान, सोमालिया, जिम्बाब्वे ही थे। एक विकसित देश ग्रीस से अलग ये तीनों तीसरी दुनिया के बेहद गरीब देश हैं।
ये थे अविनाश दत्त। ग्रीस के संकट से दुनिया भर में बेचैनी है, ऐसे में भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस के प्रबंध निदेशक सुनील जैन के सामने यही सवाल रखा।
एक तो ये बिल्कुल गलत होएगा ये सोचना कि ग्रीस की वजह से रुपया कमज़ोर हो रहा है या ग्रीस की वजह से FII जो है वो भारत से पैसा निकाल रहे हैं या भारत में पैसा नहीं डाल रहे। काफ़ी तीन चार चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। एक तो जैसे आपने बताया, जैसे जो हम जो बात कर रहे हैं ग्रीस का मुद्दा है। दूसरा, हमें यह भी पता है कि सितंबर अक्टूबर तक यूनाइटेड स्टेट्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो इससे ये भी मतलब लोगों का काफ़ी ये मानना है कि जैसे अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे जो लोग डेट फंड में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं FIIs वो अपना शायद अपना पैसा वापस ले जाने की शुरुआत कर देंगे। जब डिफॉल्ट हो जाएगा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक इनको और पैसे अगर ना दे तो ग्रीस में कोलैप्स होएगा। ज़रूर इंडिया पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रीस में जो कोलैप्स होएगा इससे मेनली क्या होगा, जो यूरो है वो डॉलर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो जितना डॉलर स्ट्रांग होएगा उतना रुपी वीक होएगा। तो अब जैसे कुछ लोगों का मानना है कि 65 रुपये पर चला जाएगा डॉलर, तो मतलब इंडियन रुपी वीक होएगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा।
ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि भारत के यूरोपीय संघ को जो एक्सपोर्ट होते थे सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग के जो एक्सपोर्ट्स होते थे वो भी प्रभावित हो सकते हैं। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पर?
देखिए, ग्रीस से स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स वगैरह कम नहीं होंगे, मगर हमने देखा अगर आप पिछले 8-10 महीने के एक्सपोर्ट्स देखेंगे, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट देखेंगे, कोई भी एक्सपोर्ट देखेंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स घटते जा रहे हैं। 100 बिलियन से 99, 99 से 98 ऐसे हो रहा है एक्सपोर्ट्स। तो यूरोप में हम सोच रहे थे, जो लोगों का सोचना था IMF में, वर्ल्ड बैंक में, लोगों का ये सोचना कि यूरोप की रिकवरी शुरू हो जाएगी, यूरोप की रिकवरी नहीं हो रही। पूरे यूरोप में मतलब जो उनका जो ग्रोथ एनवायरनमेंट है वो बहुत पुअर है। अब वो जो ग्रोथ एनवायरनमेंट ग्रीस की वजह से और भी ख़राब हो जाएगा, तो ये इम्पैक्ट वर्सन करेगा। मगर मैं ये फिर से आपको दोहराऊंगा कि सिर्फ ग्रीस की प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरऑल यूरोपियन प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो ग्रीस मेक्स इट वर्स।
अगर ग्रीस में संकट और बढ़ता है या और पेचीदा हो जाता है तो क्या भारतीय शेयर बाजार पर इसका अधिक दबाव पड़ेगा, आपको क्या लगता है?
देखिए, दबाव आएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 20 महीने के कंपैरिजन में दिस इज द लोएस्ट FII इनफ्लो, तो उसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार दबाव में आ रहा है। जब रुपया वीक होता है उसकी वजह से भी शेयर बाजार वीक, उसमें दबाव में आता है। तो ग्रीस का जो मामला है वो और शेयर बाजार को वीक करेगा ये, मगर पैनिक की बात है।
अगर यूरोपीय संघ कमजोर हो जाता है तो इसका दुनिया के आर्थिक हालात पर क्या असर पड़ेगा और खासतौर पर भारत पर किस तरह का असर पड़ेगा?
अब जब कंट्री यूरोजोन से बाहर जा सकती है तो उसके बैंक बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। तो अब वो फेयर हो जाएगा लोगों का यूरोप का कि जो हमने सोचा था कि जो यूरोप हमने सोचा, फर्ज करो कि ये 2016 में ठीक हो जाएगा, अब लोग सोचेंगे कि अब 2017 में ठीक होएगा या 2018 में ठीक होएगा। तो जो यूरोप का जो कैलकुलेशन है ग्लोबल रिकवरी में, वो अब हम उसको उसका जो जो हम वेट लगा रहे थे हम उसको कम करते जाएंगे, तो सर्टनली जो ग्लोबल ग्रोथ है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा।
ये थे अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस के प्रबंध निदेशक सुनील जैन। चीन ने ऐलान किया है कि वो वर्ष 2030 में उत्सर्जन की अधिकतम सीमा पर पहुंचेगा। भारत भी संयुक्त राष्ट्र में जल्द ही जलवायु पर अपनी योजना जमा करने वाला है। हालांकि इसमें उत्सर्जन की अधिकतम सीमा का जिक्र नहीं होगा। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि भारत के विकास की जरूरतों को देखते हुए किसी ने भी इस बारे में सवाल नहीं किया है। उनसे बात की बीबीसी के पर्यावरण संवाददाता नवीन सिंह खड़का ने।
अभी कुछ लोग दबाव बना रहे हैं कि भाई भारत ने भी पिकिंग ईयर डिक्लेयर करना चाहिए। अरे भाई, चाइना का आज 28% पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन है और उनका अभी पर कैपिटा 20 टन का लगभग उनका कंट्रीब्यूशन है, मेरा 2 टन है। तो अमेरिका और चाइना 2030 में जो प्रॉमिस कर रहे हैं कन्वर्जेंस, वो तो 14 टन प्रति व्यक्ति होगा एमिशन 2030 में अमेरिका और चीन का, मेरा 2 है और 14 कभी भी नहीं होगा
जी। तो भारत INDC किस तरह से पेश करेगा ये?
तो INDC हम कितना एनर्जी एफिशिएंसी, हम ऊर्जा की बचत कैसे करेंगे, ऊर्जा की कार्यक्षमता कैसे बढ़ाएंगे और हम हमारी एनर्जी इंटेंसिटी को कम कैसे करेंगे पर GDP ऑफ डेवलपमेंट, ये हम बताएंगे।
कब तक करेंगे सर ये?
जल्दी।
ये थे प्रकाश जावड़ेकर, उनसे बात की थी नवीन सिंह खड़का ने। भारत सरकार ने कल बुधवार को जोर शोर से महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया परियोजना का उद्घाटन करीब 10,000 लोगों की मौजूदगी में किया। सरकार की योजना लोगों तक इंटरनेट के जरिए सरकार और प्रशासन को पहुंचाना है। लोगों की रोजमर्रा जरूरतों को पूरा करने में इंटरनेट का इस्तेमाल की सुविधा बढ़ाएगा, लेकिन भारत ऐसी सुविधाओं के लिए कितना तैयार है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
एक समय था कि सदियों पहले लोग बसते थे नदी के तट पर, गांव बसते थे, शहर बसते थे नदी के तट पर या समंदर के किनारे पर। वक्त बदल गया, बाद में जहां जहां से हाईवेज गुजरते थे शहर वहां बसना शुरू किए, लेकिन अब मानव जाति वहीं पर बसेगी जहां से ऑप्टिकल फाइबर गुजरता होगा।
इंटरनेट का प्रसार जिस तेजी से बढ़ा है उसे देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से कोई हैरानी नहीं होती, लेकिन डिजिटल भारत का जो सपना सरकार ने दिखाया है उसकी राह में दिक्कतें भी बहुत हैं। भारत में अंग्रेजी नहीं जानने वालों के लिए मोबाइल पर रेल का टिकट बुक करना भी मुमकिन नहीं। यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो बिना अंग्रेजी जाने कोई लेन देन भी नहीं हो सकता। तकनीकी मामलों के जानकार आशुतोष सिन्हा कहते हैं,
यहाँ के लोगों की मातृभाषा जो है उसमें आप रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। जो प्रधानमंत्री ने कहा है ये सब कुछ हमें सॉफ्टवेयर के जरिए करना पड़ेगा, तो क्या सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि हमारी मातृभाषा में आज उपलब्ध है? क्या उस पर मैं सिर्फ एक चिट्ठी लिख सकता हूँ? बैंकिंग तो बहुत दूर की बात है। क्या मैं उसके जरिए मैं किसी चाहूँ तो ईमेल कर सकता हूँ बगैर इसके 10 तरह के झंझट हुए? क्या मैं कर सकता हूँ? सीधा सीधा इसका जवाब है नहीं।
तो फिर ऐसे देश में जहाँ महज कुछ किलोमीटर के अंतर पर भाषा और बोली बदल जाती है, सरकार का डिजिटल इंडिया अभियान कैसे सफल होगा? समस्या सिर्फ भाषा की नहीं है। दुनिया भर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाला भारत अब तक अपने देश के कीबोर्ड में स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बदलाव नहीं कर पाया है। आशुतोष सिन्हा,
जैसे कि आज कीबोर्ड हमारे देश में है, रुपया का साइन वो आज तक कीबोर्ड पर हमने स्टैंडर्डाइज नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो इसके लिए आप दूसरे जो करेंसी है उसका स्टैंडर्डाइजेशन आपको मिलेगा, लेकिन रुपया का नहीं मिला है। अब ये एक डिटेल की बात है।
इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले देशों की सूची में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर है। हालांकि अभी भारत के महज 20% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये संख्या बीते सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है और अब भी विस्तार की अनंत संभावनाएं हैं। इसके बावजूद इंटरनेट की गति का मसला जितना बड़ा है, उतना ही ये कि स्मार्टफोन अब भी बहुतों के लिए सपना है। डिजिटल इंडिया के उद्घाटन के मौके पर मंच पर मौजूद कारोबारियों ने ही 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश की शपथ ली और करोड़ों की तादाद में नई नौकरियां पैदा करने की भी बात कही। लेकिन जब तक बुनियादी मसलों का हल नहीं निकलता, इस तरह के कार्यक्रमों से आम लोगों के जुड़ने पर सवाल तो है ही।
रिपोर्ट थी वात्सल्य राय की। एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सत्ता संभाली थी, तब आलोचकों ने शंका जताई थी कि आने वाले समय में देश के धार्मिक सद्भाव के माहौल में खटास पैदा हो सकती है। पिछले साल में मुसलमानों और ईसाइयों पर हो रहे हमले क्या इसी ओर इशारा करते हैं? पेशा दिव्यारी की रिपोर्ट।
भारत का संविधान हर धर्म के लोगों को अपने तरीके से रहने, पूजा पाठ करने की आज़ादी देता है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि पिछले समय में इस धार्मिक सद्भाव के ताने बाने में तनाव आने लगा है और ये सबसे ज़्यादा दिखाई देता है जब हम शहरों से बाहर निकल गांवों में आते हैं, जैसे यहाँ दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर कैराना में।
यहाँ मुसलमान हैं, आज जो बाहर के वो हो गए हिंदू लोग, वे ना इनको जो बाहर मुसलमान वहाँ उनके गमों पड़े उनको बाहर काट दे जा रहे हैं, मार के।
पीट कौन कर रहे हैं?
मारपीट दूसरी कौन कर रही है?
मोहम्मद जमशेद के मुताबिक मुसलमानों के मन में खौफ पैदा करने की इन कोशिशों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। मोहम्मद मुझे अपने 18 साल के साले दीन से मिलवाते हैं। मुसलमानों पर हो रहे हमलों के खिलाफ अप्रैल में हुए एक प्रदर्शन में दीन को गोली लग गई और अब वो चल नहीं सकते।
मैं खड़ा होकर देखने लगा तो मेरे बराबर में एक पुलिस की गाड़ी थी और उसमें से मेरे पर गोली चली। बस गोली लगी, मैं सुनसा हो गया, मेरे को पता नहीं मुझे क्या हो गया और फिर मेरे पैर मुड़ने शुरू हो गए, मुझे खून के उल्टे होने लगे।
शायद इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव के सबसे ज़्यादा मामले उन इलाकों में हैं जहां उनकी संख्या कम है, जैसे पास के इस शहर शामली में।
मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और आज तक कभी किसी सरकार में इतना बुरा व्यवहार नहीं हुआ है जितना कि इसमें मारपिटाई और हालात इतने ख़राब कर दिए सरकार ने कि दोबारा तो हम इसका नाम भी नहीं लेंगे।
जब तक हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और नहीं तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एक दिन वो होगा कि पूरे के पूरे सड़क पे आएंगे और पूरा आंदोलन होगा यहाँ, और क्या होगा।
और ऐसी चिंताएं गांव तक ही सीमित नहीं हैं। यहाँ राजधानी दिल्ली में पिछले साल के दौरान 5 गिरजाघरों पर हमला हुआ है।
इस कमरे में से धुआं निकल रहा है, फिर अंदर आके कमरा खोला, फिर आग स्प्रेड हुआ पूरे चर्च में और फिर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया।
सेंट सेबास्टियन चर्च के पादरी एंथनी फ्रांसिस का दावा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी बल्कि ये हमला था, पर उनके मुताबिक उनके सबूतों में पुलिस की कोई दिलचस्पी नहीं।
क्योंकि मैंने पुलिस से खुद पूछा था कि आप लोगों ने कितने सारे कम्युनल फोर्सेस जो यहाँ पर एक्टिव है, एसोसिएशन या ग्रुप्स जो एक्टिव है, उनमें से कितने सारे लोगों से आपने इंटरव्यू लिया, उनका यही कहना था कि अगर हम उनसे पूछेंगे तो वो सच नहीं कहेंगे।
पादरी एंथनी फ्रांसिस जैसे अल्पसंख्यकों की चिंता अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के सामने रखी। अगर कोई अल्पसंख्यक हमें ये कहता है कि उन्हें लगता है कि जो लोकल स्तर पर हिंदू ताकतें हैं उनको एक शह मिली है क्योंकि हिंदू पार्टी है जो इस वक्त देश में सत्ता में है, इसको आप कैसे देखते हैं?
इतना बड़ा जनादेश मिला है तो हिंदुत्व पे तो नहीं मिला, डेवलपमेंट पे मिला है।
आप बात नहीं कर रहे पर अगर हिंदू और जो ग्रुप्स हैं, जो अन्य ग्रुप्स हैं, अगर वो कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि एक संदेश सरकार की तरफ से उन्हें जाना चाहिए?
इस तरह की सिरफिरी आवाज़ें चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों चाहे कुछ और लोग हों, उनकी में कुछ इस तरह के ग्रुप्स होते हैं, आप उसको जो है वो कोई भी युग आएगा वो ग्रुप रहेगा।
इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के चिंतित अल्पसंख्यकों से सीधे बात की दिल्ली में ईसाई समुदाय द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में।
My government will not allow
मेरी सरकार किसी भी धार्मिक संगठन को किसी के खिलाफ हिंसा भड़काने नहीं देगी, फिर चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय का हो या बहुसंख्यक।
अभी एक मेजोरिटेरियन सोसाइटी को तैयार किया जा रहा है।
लेखिका अरुंधति रॉय के मुताबिक सिर्फ अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं हो रहे, बल्कि सामाजिक ताने बाने में सुनियोजित परिवर्तन लाया जा रहा है।
ये नहीं है कि अभी से शुरू है, पार्टीशन क्यों हुआ था इसीलिए, क्योंकि बहुत बढ़ गया था, लेकिन पूरा कल्टिवेट किया जा रहा है एक दूसरी किस्म का कल्पना समाज के बारे में, सिस्टमैटिकली टेक्स्ट बुक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, मीडिया में बहुत सिस्टमैटिकली कल्टिवेट किया जा रहा है।
सेंट सेबास्टियन चर्च की जली हुई इमारत के पास सफेद टेंट के नीचे पूजा अब भी जारी है। पादरी एंथनी फ्रांसिस के मुताबिक नई इमारत तो समय के साथ बन जाएगी, पर देश में टूटते रिश्तों को जोड़ना शायद उतना आसान ना हो।
ये कंट्री अगर सेकुलर कंट्री नहीं रहा तो फिर क्या होगा, व्हाट विल कंडीशन ऑफ द माइनॉरिटीज।
ये रिपोर्ट थी दिव्य आर की, और आप जानते हैं आज के अखबार क्या कह रहे हैं। अविनाश तथा हमारे साथ स्टूडियो में अविनाश।
विनीत, प्रधानमंत्री यत्र तत्र सर्वत्र छाए हुए हैं, वैसे प्रधानमंत्री से ज्यादा तो विज्ञापन छाए हुए हैं अखबारों में, और मतलब हर अखबार का पहला पन्ना तो विज्ञापनों से ही पटा रहता है आजकल, तो अखबार जो है विज्ञापनों की चादर के नीचे ही आते हैं। तो यहाँ पे कमोबेश एक तरह की एक दो खबरें जो हर जगह हैं, जैसे जिस खबर का तो हम जिक्र कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने जो डिजिटल इंडिया की शुरुआत की, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहता, लेकिन एक खबर और है कि ललित मोदी ने सुषमा स्वराज के पति को दिया था कंपनी में डायरेक्टर बनाने का ऑफ़र। जो सुषमा स्वराज के पति हैं स्वराज कौशल, जो कि बड़े वकील हैं, उन्होंने ऑफ़र ठुकरा दिया था। एक और खबर है जो कि दो तीन जगह है मेरे हाथ में, दैनिक भास्कर है ये खबर, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, कि केंद्रीय मंत्री रिजिजू को बैठाने के लिए हवाई जहाज से 3 यात्री उतार दिए गए, 57 मिनट हुआ लेट प्लेन, ये लेह की घटना है, और कोई 35 सेकंड का वीडियो भी बनाया है किसी ने। ये खबर है दो तीन जगह। जिन सज्जन को उतारा गया वो एयरफोर्स के थे, अब उनके साथ उनका परिवार था और उनको उतार दिया गया। उन सज्जन का ऐसा दावा है कि उनको पहले नहीं बताया गया और वो अपने परिवार को लेके पहुंच गए। इसके अलावा अगर और दूसरी खबरों की जिक्र करूं जो इक्का दुक्का यहाँ यहाँ दिख रही हैं, उसमें एक खबर है अमर उजाला के पहले पन्ने पर कि किसान गजेंद्र सिंह को कैसे दिया शहीद का दर्जा दिल्ली हाईकोर्ट। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि भाई ये गजेंद्र सिंह किस तरह से शहीद हो गए हैं। ये आपको याद होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इन्होंने फांसी लगा ली थी, या ये गलती से गिर गए थे इसके ऊपर विवाद है, लेकिन इनकी मौत हो गई थी पेड़ से लटक कर, तो उसको शहीद का दर्जा दिया उन्होंने। तो ये शहीद का दर्जा किस तरह का है ये दिल्ली सरकार ने दिया था, इसके ऊपर उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है, 2 सितंबर तक जवाब देने को कहा है। इसके अलावा एक खबर है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि महिला सम्मान के खिलाफ है बलात्कार मामलों में किसी भी तरह का समझौता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसकी पृष्ठभूमि में अगर आपको याद हो तो वो फैसला है मद्रास के एक चेन्नई के एक हाई कोर्ट के जज साहब ने बलात्कार पीड़िता और जो बलात्कार करने के उनके जो जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था उनके बीच में समझौता कराने की बात कही थी, तो उसके बाद पूरे देश में काफ़ी बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। अगर इंडियन एक्सप्रेस का जिक्र करूं तो वहां पर एक पुराने कांग्रेसी नेता हैं हंसराज भरद्वाज, वो रह रहे के पार्टी और गांधी परिवार के लिए कुछ कुछ बोलते रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से बोल रहे हैं, वो राहुल से उनकी परेशानी है थोड़ा कुछ दिनों से, ऐसा उन्होंने उसी परेशानी का फिर से इजहार किया है। भरद्वाज स्लैम से जोन पार्टी कांग्रेस टू वीक टू फाइट बीजेपी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेहद कमज़ोर है, वो तो इस स्थिति में ही नहीं है कि वो लड़ सके भारतीय जनता पार्टी के साथ। उन्होंने कहा कि राहुल इज़ आउट ऑफ टच, राहुल को कुछ पता ही नहीं है कि ज़मीन पे हो क्या रहा है। और अगर एक टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं आवाज़ कहूँ तो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसी तरह की खबरें हैं कि किस तरह से किरण रिजिजू की वजह से, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी वजह से उतार दिया गया है। एक खबर खासी इंटरेस्टिंग है, हिंदू अखबार में छपी है कि दिल्ली की एक बहुत पुरानी मिठाई की दुकान थी घंटे वाला, 225 साल पुरानी दुकान चांदनी चौक पर, वो अब बंद हो जाएगी। ये दुकान 1790 में खुली थी और ये अब बंद हो गई है। ये घंटे वाला इसको इसलिए कहते थे क्योंकि इसके यहाँ इस दुकान में कभी एक घंटा था जिसे बजाया जाता था, तो जो लाल किले से कुछ दूरी पे था, तो वहाँ शाह आलम द्वितीय जो सम्राट थे मुगल, तो वो उसको सुन के अपने लोगों को भेज देते थे कि जाओ भाई मिठाई ले आओ। और इस मिठाई का लुत्फ़ उठाने वालों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी थे, राजीव गांधी भी थे। तो इस
कारण का एक जिक्र है कि क्यों बंद करना पड़ा इसे,
ये एक जिक्र नहीं, बस इस दुकान के मालिक का एक वर्जन है जिसमें ये कहा है कि ये वो निजी कारणों से बंद कर रहे हैं।
शुक्रिया अविनाश। और अब विंबलडन में मैचों का ताजा हाल बता रहे हैं लंदन से हमारे सहयोगी।
विंबलडन 2015 दिन भर के खेल का लेखा जोखा।
विंबलडन पर लंदन से बीबीसी हिंदी सेवा की इस विशेष प्रस्तुति में आपके साथ हूं मैं अपूर्व कृष्ण। लंदन में कल इस साल का सबसे गर्म दिन था। सेंटर कोर्ट पर तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था और वहां पहला बड़ा मैच हुआ दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच का। दो बार के विंबलडन विजेता जोकोविच ने फिनलैंड के यार्को निवेदन को बड़े आराम से 6-4, 6-2, 6-3 से सीधे सेटों में हरा कर तीसरे राउंड में प्रवेश किया। जोकोविच के अलावा चौथी सीड के इस साल के फ्रेंच ओपन विजेता स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका भी डोमिनिकन रिपब्लिक के विक्टर एस्ट्रबुर्गोस को सीधे सेटों में 6-3, 6-4, 7-5 से हराकर तीसरे दौर में पहुंच गए। कल सेंटर कोर्ट पर एक दूसरा बड़ा मैच पांचवीं सीड के जापान के खिलाड़ी केई निशिकोरी का भी था, पर वे चोट के कारण नहीं खेल सके, जिससे कोलंबिया के खिलाड़ी सांटियागो खिराल्डो को बिना खेले तीसरे राउंड में प्रवेश मिल गया। पुरुष सिंगल्स में पिछले साल के यूएस ओपन विजेता नवी सीड के क्रोएशिया के मारिन चिलिच भी दूसरे राउंड का मैच जीत गए। महिला सिंगल्स में 5-5 बार विंबलडन जीत चुकी वीनस बहने सरीना और वीनस विलियम्स के अलावा मारिया शरापोवा ने दूसरे दौर का मैच जीत लिया, मगर सातवीं सीड की सर्बिया की खिलाड़ी एना इवानोविच दूसरे दौर में हारकर बाहर हो गई। अमेरिका की सरीना विलियम्स ने हंगरी की टाइम बोबोश को बड़े आराम से 6-4, 6-1 से हरा दिया। मैच एक घंटे से पहले ही खत्म हो गया, मगर सरीना ने कहा कि लगातार दूसरे मैच में उनकी विरोधी अच्छा खेली। मैं अच्छा बिल्कुल खेल रही हूं, मगर दोनों मैच मुश्किल थे, मुझे अपने खेल पर पकड़ बनानी पड़ी। सरीना विलियम्स के शब्द। कल डबल्स मुकाबलों में भारत के तीन खिलाड़ियों के मैच थे, जिनमें लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा आसानी से दूसरे दौर में पहुंच गए। लिएंडर पेस और कनाडा के उनके जोड़ीदार डेनियल नेस्टर का मैच सर्बिया के खिलाड़ियों डुशान लायोविच और विक्टोर तुरेश्की के साथ था। 11वीं सीड की पेस नेस्टर की जोड़ी ने पौने दो घंटे तक चला मैच सीधे सेटों में 6-3, 6-4, 7-5 से जीत लिया। वहीं सानिया मिर्जा ने स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ अपना पहला मैच जीत लिया। उनका मुकाबला चीन की जंग साईसाई और कजाकिस्तान की जरीना दियास की जोड़ी से था। सानिया और हिंगिस ने 1 घंटे 9 मिनट तक चला मैच आसानी से 6-2, 6-2 से जीत दूसरे दौर में जगह बना ली। कल डबल्स में भारत के एक और खिलाड़ी पूरव राजा की चुनौती पहले ही राउंड में टूट गई। अब आज विंबलडन के चौथे दिन पुरुषों में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर, ब्रिटेन के एंडी मरे, महिलाओं में पिछली बार के विंबलडन विजेता दूसरे नंबर की खिलाड़ी पेत्रा क्वीटोवा का दूसरे राउंड का मैच होगा। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी विंबलडन।
और कार्यक्रम के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। यूरोजोन के वित्त मंत्रियों ने तय किया है कि ग्रीस के साथ तब तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक वहां से जनमत संग्रह का फैसला नहीं आ जाता। मिस्र के सिनाई इलाके में सेना और इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के बीच चल रही भीषण लड़ाई में दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। एक अन्य कार्रवाई में मिस्र की सेना के विशेष सैनिकों ने काहिरा में एक इमारत पर हमला किया और मुस्लिम ब्रदरहुड के 9 सदस्यों को मार डाला। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री देश की संसद से आग्रह करने वाले हैं कि वो सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ऊपर हवाई हमले न करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। सऊदी अरब के खरबपति शहजादे अल वलीद बिन तलाल ने कहा है कि वो $32 अरब की अपनी कुल निजी संपत्ति दान में दे देंगे। उन्होंने कहा है कि वो अपनी दौलत को दुनिया से बीमारियों को हटाने में, प्राकृतिक आपदाओं से परेशान लोगों की मदद में और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में लगाएंगे। बीबीसी समाचार।
शुक्रिया अविनाश दत्त आपका, और शुक्रिया हेमंत कुशवाहा का भी जो स्टूडियो संभाल रहे थे। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को दीजिए अनुमति। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी एक घंटे बाद विश्व भारती में।